ओम सभी लोग कुछ पलों के लिए सीधे होकर के बैठिएगा। कमर को गर्दन को सीधी रेखा में, दृष्टि सामने की ओर। कोमलता से धीरे धीरे आंखें बंद कर लीजिएगा। कण कण में विराजमान, सर्वत्र व्याप्त, सर्वांतर्यामी परमपिता परमेश्वर को ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां परमेश्वर ना हो। सर्वत्र परिपूर्ण परमपिता परमेश्वर को आत्म समक्ष अनुभव करना है, अर्थात मैं प्रभु में हूं, प्रभु मुझ में है, मेरी बुद्धि प्रभु में है, प्रभु मेरी बुद्धि में है, मेरा अहंकार प्रभु में है, प्रभु मेरे अहंकार में है, मेरा मन प्रभु में है, प्रभु मेरे मन में है, मेरी सारी इंद्रियां प्रभु में हैं, प्रभु मेरी इंद्रियों में है, मेरा संपूर्ण शरीर प्रभु में है, प्रभु मेरे शरीर में है, ऐसी अनुभूति करनी है। पूर्ण निष्ठा से, रुचि से, प्रेम से, तन्मयता से, अंदर से गदगद होते हुए तीन बार ओम का उच्चारण प्रारंभ करना है। उच्चारण प्रारंभ करते ही मन में परमपिता परमेश्वर को अनुभव करना है। हे अनंत प्रकारों से रक्षा करने वाले प्रभु, आप सर्व रक्षक हो, विविध प्रकारों से सतत मेरी रक्षा कर रहे हो, आपकी विविध सुरक्षाओं में सतत सुरक्षित हूं, कृपा करके और सुरक्षा प्रदान करना प्रभु। इन भावों को मन में लाते हुए लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करना है। श्वास भरिए। ओ शांत, एकाग्र, आत्मसमर्पण। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्त विस्तारम्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। अब आंखें खोल लीजिएगा। परमपिता परमात्मा की अनंत कृपा से, प्रभु की शक्ति से, प्रभु के सामर्थ्य से, प्रभु के ज्ञान विज्ञान से, प्रभु द्वारा प्रदत्त समस्त साधनों से युक्त होकर आज हम सब श्वास प्रश्वास ले रहे हैं। आज जीवित हैं तो प्रभु के प्राणों के कारण से हैं। ये प्राण सतत हमारे साथ हों, हम इसी प्रकार से अपने प्राणों को बनाए रखें, ऐसे परमपिता परमात्मा को स्मरण करते हुए कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसे हम योग के नाम से जानते हैं। ये आखिर ये योग है क्या? यद्यपि आज योग के नाम से पूरा विश्व पहचानता है योग को, पर ये योग केवल प्रातःकाल उठकर के कुछ समय के लिए आसन करने तक, प्राणायाम करने तक, या थोड़ी देर ध्यान मेडिटेशन के रूप में करने तक सीमित नहीं है। योग जीने की एक शैली है। प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक जो कोई भी क्रिया हम करते हैं, जिसके लिए करते हैं, जिसको सामने रख करके करते हैं, प्रत्येक क्रिया के पीछे योग जुड़ा हुआ है, इस बात का एहसास, अनुभव, फील जो व्यक्ति करता है वो अपने जीवन को जीवन के रूप में बिता सकता है। और इस जीवन का जो वास्तविक स्वरूप है, इस मनुष्य शरीर में आने का जो प्रयोजन है, जो एम है, जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए वो मेहनत पुरुषार्थ कर सकता है। योग में एक छोटा सा एक विभाग है, जैसा कि आप सब समझते हैं योग के 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और यम के जो 5 विभाग हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम के भी 5 विभाग हैं, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये योग है। इस पूरे योग में दूसरा जो योग का अंग है वो है नियम, और उस नियम के 5 विभागों में एक विभाग है जिसका नाम है शौच। शौच का अर्थ होता है शुद्धि, पवित्रता, निर्मलता, साफ सफाई। और ये जो पवित्रता है, जो शुद्धि है, वो 2 प्रकार से होती है। एक तो एक्सटर्नली बाहर से हम साफ सफाई रखते हैं और उसके बारे में मेरे कुछ कहना नहीं है, ऑलरेडी हम बहुत अच्छे ढंग से यहां साफ सफाई रखते ही हैं। हमारे कपड़े भी बहुत साफ रहते हैं, चमकते हैं, हमारे जूते चप्पल भी बहुत साफ सुथरे होते हैं, हमारी गाड़ी भी बहुत साफ सुथरी होती है, हमारा मकान भी बिल्कुल बढ़िया होता है, हर चीज को हम बहुत सिस्टमेटिकली साफ सुथरा रखते हैं, नीट एंड क्लीन रखते हैं। यह है शुद्धि, यह है शौच, यह शौच का शुद्धि का एक भाग है। लेकिन इसके साथ में एक भाग और है जिस पर हमारी दृष्टि बहुत कम रहती है, और जिसके बिना हम अपने जीवन में परस्पर जो हम व्यवहार करते हैं, चाहे वो पति पत्नी के साथ हो, चाहे वो भाई भाई के साथ हो, या भाई बहन के साथ हो, या बच्चों का माता पिता के साथ हो, या माता पिता का बच्चों के साथ हो, या परस्पर मित्र आदि के साथ में हो, या सोसाइटी के अंदर जिन जिन लोगों के साथ हम मिलते जुलते हैं, जो भी व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार के साथ क्यों ना हो, सबके साथ में एक बहुत बड़ा काम होता है जिसका नाम है शुद्धि पवित्रता। और ये बेस है, आधार है योग में समाधि तक पहुंचने के लिए। परस्पर हम एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या करते हैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब बिजनेस क्या करते हैं ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कौन सा जॉब करते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, कितना पैसा आपके पास है, कितना बड़ा मकान आपके पास में है, कितनी अच्छी गाड़ी आपके पास में है, और सोसाइटी में आपका कितना नाम है, कोई मैटर नहीं करता। यदि ये शुद्धि, ये पवित्रता यदि हमारे में है भीतर, अंदर, इंटरनली, तो बहुत मैटर करेगा। तब वो मैटर करेगा कि पत्नी के साथ मैं कितनी शुद्धता रखता हूं, कितना शुद्ध हूं, कितना पवित्र हूं, पति के साथ, माता पिता के साथ, बच्चों के साथ, मित्रों के साथ, पड़ोसी के साथ, समाज के साथ, ये बहुत मानी रखता है। इसी को कहा है शुद्धि पवित्रता। महर्षि मनु महाराज ने कहा अद्भिर गात्रानि शुद्ध्यन्ति। ये तो गात्र तो पानी के साथ शुद्ध हो जाता है, पानी से नहीं होता। आप साबुन लगाते हैं, शैंपू लगाते हैं, कुछ भी लगा करके बॉडी को, ऊपर से स्किन को कितना ही बढ़िया शुद्ध हम कर सकते हैं, तो करते ही हम लोग, पर अंदर से कितना अपने आप को शुद्ध रखते हैं ये मैटर करता है योग में, और अपने जीवन में सुखी होने में, संतुष्ट होने में, निर्भीक रहने में, बिना डरे रहने के लिए, अंदर से शांति अनुभव करने के लिए, अंदर से व्यक्ति तृप्त रहे उसके लिए, और टेंशन फ्री रहे, स्ट्रेस फ्री रहे, उसके लिए शुद्धि का अत्यधिक महत्व है योग में। योग में इट मींस अपने जीवन शैली में, डे टू लाइफ के अंदर, यदि मैं अंदर से पवित्र नहीं हूं तो ऊपर एक्सटर्नली कितना ही बड़ा बन जाऊं, आदमी भयंकर इंटरनली दुखी रहेगा, असंतुष्ट रहेगा, भयभीत रहेगा, अतृप्त रहेगा, नाखुश रहेगा, और अंदर से इतना स्ट्रेस में रहेगा, वो ऊपर नहीं उठ सकता, वो उस भगवान को अचीव नहीं कर सकता, वो भगवान तक पहुंच ही नहीं सकता। बाकी शब्दों से हम कितना ही रट्टा लगाते रहें और कितना ही प्रवचन करते जाएं, कितने लोगों को बहुत अच्छा सजेस्ट करते रहें, वो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं इंटरनली बहुत भयंकर अशुद्धि से ग्रस्त हूं। इसके लिए एक ऋषि ने बहुत अच्छी बात कही, वो कहते हैं मनस्यन्यत् वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यत् दुरात्मनाम् मनस्येकम् वचस्येकम् कर्मण्येकम् महात्मनाम्। बहुत बड़ी बात कही ऋषि ने, आदमी क्या अपना स्वरूप दिखाता है, देखिएगा आदमी क्या स्वरूप दिखाता है। वो कहते हैं मनस्यन्यत, इसको थोड़ा मैं डिवाइड करूं एक एक शब्द को, मनसी अन्यत, वचसी अन्यत, कर्मणि अन्यत, दुरात्मना। मनसी एकम, वचसी एकम, कर्मणि एकम, महात्मना। किसको दुरात्मा कहते हैं, किसको दुष्ट आत्मा कहते हैं, और किसको महात्मा कहते हैं, और आपकी लैंग्वेज में बोलो सज्जन, ठीक है ना। और मैं हरियाणवी में या पंजाबी में बोलूं महाशय जी, कभी सुना ये वर्ड? हाँ जी महाशय जी बैठिए, ऐसा बोलते हैं बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं ना, उनको वहां हरियाणा में पंजाब में बोलते हैं महाशय जी। महान आशय है जिसका, महाशय का मतलब होता है महान आशय है जिसका, उसका नाम है महाशय। महाशय जी यहां बैठिए, ऐसा बोलते हैं, यानी सज्जन व्यक्ति। सज्जन किसको कहते हैं, दुर्जन किसको कहते हैं, ऋषि ने एक श्लोक के माध्यम से स्पष्ट किया। हाँ जी, तो देखिएगा वो कहते हैं मनसि अन्यत, मनसि अन्यत। आदमी अपने स्वरूप को क्या दिखाता है? मनसि अन्यत, मन में कुछ और है, मन में कुछ और है। अब जब वाणी से जब बोलता है तो कुछ और ही बोलता है। कोई घर में आया, मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोई भी एनी बड़ी एबीसीडी घर पे आ गया, मन में है क्यों आ टपका ये, क्यों आ गया ये, मन में तो ये है। अब मेरा सिर खाएगा ये आदमी, मेरा समय बर्बाद करेगा ये आदमी, वैसे टाइम नहीं है मेरे पास में, मन में तो ये है। और वाणी में ओ भाई साहब आइए आइए, कम 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 ना, सिट सिट, ठीक है ना, यू नो, आइए आइए बैठिए बैठिए, बस मैं तो आप ही की प्रतीक्षा कर रहा हूं। कई बार तो ऐसा भी बोलता, ओवर होकर के बोल देता है, आइए आइए बैठिए, मैं तो सोच ही रहा था कि आप आएंगे, लेकिन मन में कुछ और है और वाणी से कुछ और बोल रहा है और शरीर से कुछ और ही कर डालता है। ऋषि कहते हैं मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है और शरीर से कुछ और करता है वो आदमी, उसके लिए ऋषि कहते हैं दुरात्मा है ये तो दुष्ट आत्मा है, इसी को दुष्ट कहते हैं। और सज्जन किसको कहते हैं? ऋषि कहते हैं मनस्येकम, मनस्येकम, जैसा मन में है वैसे वाणी से, और जैसा वाणी से बोले वैसे शरीर से करे। मेरे को लगता है ये सिर खाता ये आदमी, टाइम वेस्ट करता ये आदमी, समय बर्बाद करता, खुद कुछ नहीं करता, निठल्ला है, मेरे कुछ काम करने नहीं देता। तो घर पे आ गया, भाई साहब मैं बहुत काम कर रहा हूं, कृपा करके अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो कोई बात हो तो दो शब्दों में बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। बोलो ना, जैसे मन में वैसे वाणी से बोलो ना। आप क्या समझते हैं मैं बुद्धिमान हूं, मैं एक्सपर्ट हूं, मैं बहुत स्मार्ट हूं, मैं उसको कुछ ऐसा बोलूं जिससे कि वो पहचाने नहीं मेरे को, आपके मन में क्या चल रहा है, क्या मानेंगे आपको, वो नहीं जानता। वो भी तो बुद्धि रखता होगा ना, वो भी तो सोचता देखो ये क्या ऊपर ऊपर से तो बोल रहा है, दिखा रहा है, अंदर तो पता नहीं क्या है। वो भी तो समझता होगा ना, वो भी आखिर आदमी है। तो जैसा मन में वैसा ही वाणी में करो ना। और देखिएगा, और मोटा उदाहरण देता हूं मैं, कुछ जैसे भी ये रिवाज है, अब यहां का क्या रिवाज है आई डोंट नो, लेकिन भारत में रिवाज है कोई भी गेस्ट आता है तो फ्रिज खुलता है, कुछ ना कुछ निकालते हैं, कुछ ना कुछ ट्रे में रखते हैं, कुछ ना कुछ परोसते हैं, और सामने नहीं 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 अभी खा के आए हैं, वो नहीं अभी अभी जस्ट अभी तो खा के आए हैं, दो मिनट नहीं हुआ, पांच मिनट नहीं हुआ, दस मिनट नहीं है, हमको कुछ जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं साहब, वो साहब दस बार ऑफर करते हैं और दस बार वो मना करते हैं, फिर ग्यारहवें बार खा जाते हैं। मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत, मन में कुछ और है, वाणी से कुछ और बोलना है और शरीर से कुछ और ही करना है। मेरी बात समझ रहे ना, इसका नाम है शिष्टाचार, इसको बोलते हैं शिष्टाचार है ये, पता नहीं दुष्टाचार किसको कहते हैं। अगर यही शिष्टाचार हो कि मन में तो खाने की इच्छा है, ठीक है ना, मन में तो खाने की इच्छा है और वाणी से बोला जा रहे थे नहीं चाहिए और शरीर से बाद में खा जाएंगे, मन में कुछ और है, वाणी से कुछ और बोला जा रहा है और शरीर से कुछ और किया जा रहा है, अगर यही शिष्टाचार है तो फिर दुष्टाचार किसको कहते हैं। तो क्या हम ये बोले लाओ 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 खाएंगे, मतलब कोई ऑफर करे, कोई व्यक्ति ऑफर करे ये लीजिए ना, हाँ लाओ लाओ खाओगे, तो ये कहेंगे ये क्यों कहो आप, भगवान ने हमें बुद्धि दी है ना, ढंग से कहो, सिस्टमेटिकली ऑफर को एक्सेप्ट करो, मैं बहुत दूर से आया हूं, बहुत बहुत कृपा हो गई आपकी कि मैं भारत की बात कर रहा हूं, मैं गर्मी में आया हूं, पसीना हो रहा है, आपने बड़ा ठंडा शरबत वो ये आपने ऑफर किया, बहुत धन्यवाद जी, मैं बहुत गर्मी से आया, लाख लाख शुक्रिया जी, मैं एक्सेप्ट करता हूं, स्वीकार करता हूं। बड़े शाने होकर के बोल के स्वीकार करो ना, मना किसने किया, समझ रहे मेरी बात को, मन में जैसा है वैसे वाणी से करो ना। अब क्या मतलब 10 बार मना करके स्वीकार करेंगे वो अच्छा है, या पहली बार उनको बड़े अच्छे शब्द बोल करके उनको धन्यवाद देते हुए बड़े शाने होकर के बड़ी अच्छी बात करते हुए स्वीकार करना अच्छा है। वेद क्या कहता, वाचा वदामी मधुमत, कभी ये सेंटेंस सुना, ये वेद का वाक्य है, यानी वेद मंत्र का एक टुकड़ा है। वेद कहता है वाचा वदामी मधुमत, अब अपनी वाणी से ऐसा बोलिएगा सामने वाले को बुरा ना लगे, और आपको नीड है उस चीज की, गर्मी से आए आप, प्यासा है आपको, भूख लग रही है, जो भी है, अगर वास्तव में नहीं खाना, बगल से आए आप और अपने घर पे ब्रेकफास्ट जो भी कुछ खा पी करके आए, तो मत लो ना, क्यों लो, आप ऑफर कर रहे हैं इसलिए लेना, आपको नीड नहीं है तो क्यों खाओ आप भाई, आपको नीड नहीं है तो क्यों खाओ आप, अपने अपनी गाड़ी में गैस भर दिया और 5 मील जाकर के दोबारा भरोगे क्या गैस, बोलो नहीं भरोगे आप, तो इसमें क्यों भरोगे आप, जब आप अपने घर में ब्रेकफास्ट खाया, कुछ खा लिया, अब नीड नहीं है आपको, शरीर को चाहिए नहीं है, अब दूसरे के घर में गए आप और वो फिर कुछ ऑफर किया आपको, नीड नहीं है तो क्यों एक्सेप्ट करना, बुरा मानेगा, एक्सेप्ट ना करने से अच्छा मानेगा, एक्सेप्ट करने से बुरा मानेगा। ये आपको प्रेजेंटली नहीं पता लगता, बार बार आप जाओगे तब पता लगेगा। अरे एक बार साल में एक बार जाए तो किसको पता लगेगा, लेकिन आए दिन जाओ आप, बार बार जाओ और जाओ अपने काम करके आओ, और कुछ एक्सेप्ट मत करना, उसको बहुत अच्छा लगेगा, उसको कोई काम ही नहीं है, करना नहीं पड़ता है, आप अपने काम से गए, काम से मतलब रखा चले गए आप, और आप बार बार काम के लिए जाओ और खाओ पियो और फिर जाओ, तो एक दिन खिलाएंगे, 2 दिन खिलाएंगे, कब तक खिलाएंगे आपको। एक बात कह रहा हूं, कहने का मतलब है कि जैसा मन में है वैसे ही वाणी में लाओ, जैसा वाणी में है वैसे ही शरीर से करो। ये केवल दूसरों के साथ नहीं, पत्नी के साथ भी ऐसा करो, पति के साथ भी ऐसा करो, मित्र के साथ भी ऐसा करो, अध्यापक गुरु आचार्य के साथ भी ऐसे करो, जो भी आपके निकट में जिसके साथ आपका रिलेशन है, जिसके साथ आप अटैच्ड है, उनके साथ तो आपको अच्छा ही बर्ताव करना है। हम अपने ही निकट के लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे तो जिनको हम जानते नहीं है उनके साथ कैसे कर पाएंगे। इसलिए वेद क्या कहता है, वेद तो यही कहता है, मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ता, मैं तो हर व्यक्ति को, हर प्राणी को मित्र की दृष्टि से देखूं, हर प्राणी को, कोई ऐसा प्राणी नहीं दुनिया में जिसके प्रति मैं मित्र की दृष्टि से ना देखूं। तो वेद का संदेश है मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ता, मैं मित्र की दृष्टि से देखूं, प्राणी मात्र को एक ही दृष्टि से देखूं, आत्मवत व्यवहार करूं। हां, इसके लिए मन में आ जाए कि दुष्ट के साथ कैसे करेंगे हम मित्रता, मत करना। मैं दुष्ट की बात ही नहीं कर रहा हूं, एक जनरल बात कर रहा हूं। उसके लिए योग ने अलग अलग विभाग कर दिया कि बहुत सुखी संपन्न लोग हैं ना दुनिया में, बहुत सुखी संपन्न लोग हैं, उनको देख करके क्या करो, मित्रता करो उनकी, उनको मित्र बनाओ। शरीर से तो नहीं कर सकते आप सबसे मित्रता, 2, 4, 5, 10, 20 जितना कर सकते कर सकते हैं, सारी दुनिया के साथ कैसे करोगे शरीर से मित्रता। तो इसलिए योग ने, महर्षि पतंजलि ने, महर्षि वेदव्यास ने, सारे ऋषियों ने यही कहा है, आप पूरी दुनिया में 4 विभाग कर दो, दुनिया के जितने भी लोग हैं या जितने भी प्राणी हैं उन सबको 4 विभागों में बांट दो। एक ऐसा विभाग है आपको जो दिख रहा है कि सब संपन्न लोग हैं, सुखी लोग, ऐसा दिख रहा है आपको, तो उनके साथ मित्रता करो मन से, मन से उनको मित्र बना लेना। जब मन से मित्र बना लोगे तो उसका लाभ क्या होगा, उसका बेनिफिट ये होगा, आप उनसे ईर्ष्या नहीं करोगे। मेरी बात समझ रहे हैं? जो भी संपन्न लोग दिखते हैं आपको, जो भी सुखी लोग लगते हैं, चाहे वो दौलत से हैं चाहे और किसी भी दृष्टि से, वो संपन्नता उनकी दिख रही है आपको। इंटरनली संपन्न है या नहीं है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, एक्सटर्नली जो जो उनके पास है वो बहुत संपन्न दिखाई दे रहे हैं आपको, तो उनके साथ में आप मित्रता करो मन से, जिससे कि हमारे मन में उनके प्रति कोई ईर्ष्या कोई जेलसी ना पैदा हो। और ये बहुत जरूरी है, इसके बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते योग में, इसके बिना जीवन में हम सुखी नहीं रह सकते, इसके बिना हम खुश नहीं रह सकते। याद रखना, ना खुश का, दुख का, स्ट्रेस का, परेशानी का, क्लेश का एक बहुत बड़ा कारण है ईर्ष्या। एक बोल करके हम ईर्ष्या करते हैं, बिना बोले मन ही मन में, अंदर ही, क्योंकि मन पर तो कंट्रोल नहीं है हमारा। याद रखना, मन पर कंट्रोल नहीं है। किसी के बहुत अच्छा, मेरे से बढ़िया ड्रेस दिखाई दे ना, ईर्ष्या पैदा होती है। मेरे से अच्छी गाड़ी उसकी दिखती तो ईर्ष्या पैदा होती है। इंटरनली पकड़ में नहीं आता आदमी को, वो पकड़ में तब होता है जब स्ट्रेस होता है, जब परेशानी होती है, जब जीवन में दुख रहता है, कष्ट रहता है, तब पकड़ में आता है। तो मेरे पास जैसी गाड़ी उससे अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान, अच्छा दंदौलत, अच्छी क्वालिटीज, अच्छा स्किल्स मेरे से ज्यादा सामने वाले में दिखते, ईर्ष्या पैदा होती है व्यक्ति को, जेलसी पैदा होती है। वो ना हो, वो ईर्ष्या से बचना हो तो उनके अच्छे गुणों को, उनकी संपन्नता को देख करके मित्रता बना लो, क्योंकि मित्र से ईर्ष्या नहीं हो सकती। इसलिए ऋषि कहते हैं ऐसे लोगों के साथ में मानसिक रूप से सबको मित्र बना लो। तो कहते मित्रस्य अहम चक्षुषा सर्वानि भूतानि समीक्षे, वो कहते मैं मित्र की दृष्टि से सबको देख रहा हूं, फिर तो ईर्ष्या आएगी नहीं। एक बात। दूसरी बात वो कहते हैं जितने भी दुनिया में दुखी लोग दिखते हैं हमको, दूसरा विभाग बता रहा हूं, जितने भी दुखी दिखे चाहे वो इस देश का हो चाहे किसी भी देश का हो, कोई भी दुखी है, चाहे वो भोजन से दुखी है, चाहे कपड़े से दुखी है, चाहे मकान से दुखी है, या योग्यता या किसी भी स्किल के कारण उस स्किल के ना होने से दुखी है, तो ऐसे दुखी लोगों को देख करके करुणा पैदा करो, कृपा पैदा करो, दया पैदा करो मन में, अपने मन में उनके प्रति दया उत्पन्न करो, करुणा उत्पन्न करो, कृपा उत्पन्न करो, तो उसके कारण से घृणा नहीं होगी। हां याद रखना, घृणा में बहुत द्वेष होता है, याद रखिएगा, घृणा में बहुत द्वेष होता है। जैसे मान लो कोई स्नान नहीं किया किसी ने, कपड़े बहुत गंदे हैं और स्मेल आ रही है, ठीक है ना, तो उसको देख करके घृणा पैदा हो जाती है मन में, बहुत घृणा होती है, उस घृणा में द्वेष ही होता है 100%। वो दुखी है, उसका मेंटल स्टैंडर्ड बहुत लो है, उसका नॉलेज अच्छा नहीं है मान लीजिएगा, और वो उसने सीखा नहीं है, उसके लाइफ में कोई स्किल नहीं दिख रहा है हमको, और बहुत गंदा रहता है, जैसा नॉलेज है वैसा तो रहेगा। अब उसको देख करके हम घृणा करेंगे तो हमारे मन में द्वेष पैदा हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति जो होंगे, अथवा जो रोटी कपड़ा और मकान और आने जाने के साधनों के ना होने के कारण से जो दुखी है, परेशान है, ऐसे ऐसे लोगों के प्रति करुणा पैदा करो, उससे हमें उनके प्रति घृणा पैदा नहीं होगी, यानी द्वेष पैदा नहीं होगा, उससे हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ये दूसरी बात कही। तीसरी बात यह है, जो हमसे अधिक योग्य हैं, चाहे वो बोलने में हो, चाहे दिखने में हो, चाहे पैसे में हो, चाहे किसी भी वे में, हमसे हायर लेवल के हैं, हमसे बड़े हैं, हर दृष्टि से, हर एंगल से हमसे ऊपर है, बराबर नहीं, हमसे ऊपर है, जो कोई भी हमसे ऊपर दिखता है उसको देख करके भी ईर्ष्या पैदा होती है। बराबर वालों में तो होती है, लेकिन हमसे अधिक योग्यता रखने वालों में भी ईर्ष्या होती है। चाहे शरीर को देख करके, चाहे कपड़ों को देख करके, चाहे गाड़ी को देख करके, चाहे पैसे को देख करके, किसी भी वे में आप देखेंगे ईर्ष्या पैदा होती है जो हमसे आगे बढ़े हुए हैं। तो उनको देख करके ऋषि कहते हैं प्रसन्न होना, उनको देख करके प्रसन्न हो जाना। जैसे कोई एक्सरसाइज करता, अपने शरीर को बिल्कुल फिट रखता, जीरो फिगर में रहता है, ना ओवरवेटेड है ना अंडरवेटेड है, बिल्कुल टिप टॉप एकदम हेल्दी है, बहुत अच्छा है, और मेरा शरीर मोटा है या अंडरवेटेड हूं या कुछ रोगों से ग्रस्त हूं या कोई ना कोई मेरे बॉडी के अंदर है मान करके चलिए, अब वो बहुत फिट है, हर एंगल से शरीर उसका परफेक्ट दिखता है हमको, और उसको देख के बड़ा खुश हो जाना चाहिए, बड़ा प्रसन्न, वाह कमाल का शरीर बना इसने। तो उससे ईर्ष्या नहीं होगी फिर। तो जिस भी क्षेत्र में, जिस भी फील्ड में जो हमसे बड़ा है किसी भी एंगल से, उसको देख करके खुश होना सीखो, प्रसन्न होना सीखो, तो हम बहुत आगे बढ़ सकते अपने लाइफ में। चाहे वो पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे अपने समाज का हो या दूसरे समाज का हो, कोई भी हो, तो अगर हम इस तरह का करते जाएंगे तो बहुत हम योग में आगे बढ़ सकते हैं। और ये बेस है, आधार है जीवन में जीने की, यही कला है, इसी का नाम योग है, इसी को कहते हैं शुद्ध, अपने आप को पवित्र रखना। क्योंकि इंटरनली मन के अंदर कूड़ा करकट नहीं रखना होता है, मतलब ईर्षा द्वेष अहंकार काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा अहंकार, ये सब जो है ये सब अशुद्धियां हैं, ये कूड़ा करकट है, ये गार्बेज है एक प्रकार से, इनको दिमाग में मन में रखना ही नहीं है, इनको गठड़ी बांध करके बाहर निकालो, बाहर फेंक दो, ऐसे जगह फेंक दो वापस हम तक पहुंचे नहीं, उसका स्मेल भी ना आए हमारे पास में। ये जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम एक्सटर्नली कितने ही आगे बढ़ेंगे लेकिन अंततो गत्वा इंटरनली दुखी ही रहेंगे, दुखी रहेंगे। इसलिए अंदर की शुद्धि बहुत ही महत्व रखता है। इसलिए योग ने कहा है इंटरनली अंदर से शुद्ध करो, ऊपर से कुछ भी दिखाओ लेकिन अंदर से दिखाने का प्रयास करो, लेकिन वो भगवान ही देख सकता है या खुद हम देख पाएंगे, मेरे इंटरनली मेरे मन के अंदर कूड़ा करकट है या नहीं है मैं जान सकता हूं या भगवान जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता है। दुनिया के सारे क्रीम को इकट्ठा करके हम बिठाए और कोई ये कहेगा मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, और उसके मन को एक बहुत बड़े स्क्रीन पे लाया जाए, तब पता लग जाएगा कि उसके मन में क्या चल रहा है। कहने का मतलब है अंदर से पवित्र होना ये बहुत अधिक आवश्यक है। एक और बात, पुण्य कर्म करना कितना आवश्यक है ये तब पता लगता है जब हम दुनिया की सारी योनियों को अपने सामने रख लें। मेरी बात को थोड़ा गौर करिएगा और जब यहां से उठ के जाएंगे उस पर थिंकिंग करिए, विचार करिएगा कि हम कर क्या रहे हैं। दुनिया में कितनी योनियां हैं, इतनी योनियां हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, काउंट लेस है, हमारे लिए लिमिटेशन ही नहीं है, इतनी योनियां हैं। यूं तो बोलने को लोग बोलते 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों को भी गिना है क्या हमने? क्यों जी, कोई गिना है? कोई रेफरेंस है हमारे पास में किसी ने गिना हो कि भाई 84 लाख है? कहने को बोल देते हैं 84 लाख लेकिन काउंटलेस है, हम गिन ही नहीं सकते, हमारे लिए मनुष्य के लिए तो अनगिनत योनियां हैं। इतनी सारी योनियों में केवल 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 एक मनुष्य योनि ऐसी है जो मुट्ठी भर के हैं। इन सारी योनियों को सामने रख करके, किसी भी एक योनि को सामने रख करके भी देखें तो भी उस योनि के सामने मनुष्य योनि मुट्ठी भर के लोग हैं। और हमें परमात्मा ने इतना सुंदर अवसर दिया है, इस अवसर का यदि लाभ उठाना हो तो हमारी दृष्टि केवल केवल कर्म पर जानी चाहिए। नॉलेज में तो हमारी दृष्टि बहुत जाती है, क्योंकि इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है हमारे पास में, इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। लास्ट ईयर मैं एक जगह था यहीं पर अमेरिका में, तो एक आदमी ने प्रश्न किया कि देवता कितने होते हैं, तो मैंने कहा आप ही बता दो, वो भी भारतीय था पूछने वाला, मैंने आप ही बता दो कितने हो ना, 33 करोड़ देवता होते हैं। तो ठीक ही बोल रहे हो ना, फिर क्या पूछना मेरे से। नहीं स्वामी जी, मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूं आपके मन में और कोई देवता हो तो बोल देना, मैं तो इतना ही जानता हूं देवताओं को। तो उन्होंने कहा नहीं, एक और देवता को ऐड करना पड़ेगा इन 33 करोड़ में। मैंने कहा ये कौन सा देवता आ गए भाई, तो कहने लगे वो गूगल देवता। उसने कहा गूगल देवता है। हां बात तो सही है आपकी, आज आदमी के पास इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, पर उस इंफॉर्मेशन को क्या करें, खाएं, डाइजेस्ट नहीं हो रही है, इतना खोपड़ी भर गया है उस इंफॉर्मेशन से, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं जब तक उसका यूज ना किया जाए। उस इंफॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं है, मतलब तभी है जब उसका हम यूज करेंगे। तो मेरी बात पर समझने का प्रयत्न करिएगा कि इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, तो ये इंफॉर्मेशन हमारे को है कि अच्छे कर्म करना चाहिए। क्या आप में से कोई ऐसा जानता है कि अच्छे कर्म नहीं करना चाहिए? आपको ये इंफॉर्मेशन है या नहीं है? है, सबके पास इंफॉर्मेशन है। फिर अच्छे कर्म हमारे से कम हो रहे हैं, प्रैक्टिकल में वो अच्छे कर्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। देखिए किसी भी मॉल में जाना ये भी एक कर्म है, किसी भी मॉल में जाएंगे कर्म है, वेकेशन में कहीं किसी जगह पर जा रहे हैं ये भी कर्म है। कर्म कर्म में अंतर होता है, याद रखना, कर्म कर्म में अंतर होता है। वो ही कर्म आप समाज में आगे, मान ले आर्य समाज में आए, वो भी एक कर्म है, पर इस कर्म में उस कर्म में जमीन आसमान का अंतर है, इस बात को भी समझना है। आज दुनिया में एक्चुअली जो वास्तविक सत्संग, जिसको आप कहते हैं सत्संग, सत का मतलब होता है सत्य, सत का मतलब होता है श्रद्धा, सत का मतलब होता है सत्यम, और आपने वेद मंत्रों को सुनते हो, वेद मंत्र में एक आता है श्रद्धया सत्यमाप्यते, वो मंत्र का अंतिम भाग है श्रद्धया सत्यमाप्यते। व्यक्ति श्रद्धा से सत्य को, यानी सत्य से सत्य को प्राप्त करता है। श्रद्धा का अर्थ भी सत्य है, श्रद्ध का अर्थ होता है सत्य, और धा का अर्थ होता है धारण करना। जो श्रद्धा को, जो सत्य को धारण करता है वो श्रद्धा है। हमारे जीवन में यदि सत्य है तो हमने श्रद्धा को धारण किया है, और ये जो सत है यही सत्य है, और उसके संग रहना, उसके साथ जुड़े रहना, ये सत्संग है। सत्य के साथ जुड़े रहने का नाम है सत्संग, और वो सत है ईश्वर, वो सत है हम आत्माएं, और वो सत है ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड भी सत है, आत्मा भी सत है, और ईश्वर भी सत है, और इन तीनों के साथ जो व्यक्ति जुड़ा रहता है वो सत्संग करता है। मेरी बात को समझना, जो व्यक्ति सत्य यानी सत के साथ, परमात्मा सत है उसके साथ जो जुड़ता है, जो सोल आत्मा है, मैं क्या हूं, मैं के साथ जो जुड़ता है वो है सत, और ये जो पूरा ब्रह्मांड है, जिस रॉ मेटीरियल से ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना है, जो उसके साथ जुड़ता है, यानी ब्रह्मांड को ब्रह्मांड के रूप में समझना है, और आत्मा को आत्मा के रूप में समझना है, और परमात्मा को परमात्मा के रूप में समझना है, ये सत्संग से पॉसिबल है। और उस सत्संग से हम बचते जाते हैं, बचते रहते हैं। हमारे दुनिया भर के काम है, कभी ये काम है, कभी वो काम है, कभी ये काम है, फुर्सत नहीं हमारे पास में, टाइम नहीं हमारे पास में, इसलिए सत्संग में हम जा नहीं पाते। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा, महर्षि जितने भी ऋषि लोग हुए, जितने भी ऋषि लोग हुए, जब वो गुरुकुल में पढ़कर क्या पढ़ करके लड़के और लड़की ये सब पढ़ करके जब घरों के लिए निकलते हैं तो उनके गुरुजन एक बात उनको उपदेश में बहुत सारा उपदेश करते हैं, उनमें से एक बात वो जरूर बोलते हैं उसमें कि सत्संग को कभी नहीं छोड़ना। वो कहते हैं सत्संग को कभी नहीं, जिस दिन सत्संग को आपने छोड़ दिया है ना उस दिन बेड़ा गर्द हो जाएगा। सत्संग का इतना महत्व है क्योंकि व्यक्ति जब सत्संग में जाता है तब उसका अपना रूप दिखाई देता, सत्संग में उसको उसकी परीक्षा होती है, उसका एग्जाम होता है सत्संग में जाता। मैं कितना पानी में हूं, कितने पानी में खड़ा हूं, वो सत्संग से अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन करता है, अपने आप को आत्मतत्व को समझने का प्रयत्न करता है सत्संग में। और ये जो मेटेरियलिस्टिक जितना भी हम देखते हैं ना, और इसमें मैं कितना इन्वॉल्व हो गया हूं, कितना इन्वॉल्व हूं, कर क्या रहा हूं, वो उसको समझ में आता है। और मैं भगवान से कितना, भगवान को तो मैं सब जगह स्वीकार करता हूं, कण कण में स्वीकार करता हूं, ऐसा कोई स्थान स्पेस नहीं है जहां भगवान नहीं है। जब भगवान सब जगह है मैं उस भगवान से उसके अंदर रहता हूं। मैंने स्टार्टिंग में आपको दो तीन बातें करवाई है, मैं भगवान में हूं, भगवान मुझ में है। मेरी बात समझ रहे हैं कि वो मैं भगवान के अंदर रहता हुआ, भगवान के समक्ष रहता हुआ मैं उसे कितना दूर होता जा रहा हूं, ये उसको सत्संग से पता लगता है। देखिए माहौल का बहुत प्रभाव पड़ता है। आप किसी डांस शो में जाइए या आप कई ऐसे जगह जाइए, उस माहौल का बहुत प्रभाव पड़ेगा। आप डांस जहां चल रहा हो वहां बैठ जाइएगा, आप कुछ भी ना करो तो भी आप थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे तो करेंगे, सिर हिलाएंगे, घुटना हिलाएंगे, हाथ ऐसे ऐसे करेंगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसा करोगे जो वो बता रहा है कि तू डांस कर। मेरी बात समझ रहे ना, उस माहौल का हमारे मन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे अलग अलग माहौल में हम जाते हैं उनका प्रभाव पड़ता है, तो क्या सत्संग में जाते हैं तो आत्मा का प्रभाव नहीं पड़ेगा हमारे जीवन में? हमारे जीवन में परमात्मा का प्रभाव नहीं पड़ेगा हमारे जीवन में? इस पूरा मेटेरियलिस्टिक जगत में जो हम दौड़ लगा रहे हैं उससे दूर भागने का प्रभाव नहीं पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। वो कहते हैं ऋषि, सत्संगति किम न करोति, सत्संग क्या नहीं करता आदमी के लिए? सत्संग तो आदमी का जीवन ही पलट देता है। और जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी हुए महापुरुष, चाहे वो ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी और ऋषि दयानंद पर्यंत हो, चाहे वो आज के महापुरुष हो, उन सभी ने सत्संग किया। ये अलग, साइंटिस्ट जो सत्संग करता है उसका अलग प्रकार का सत्संग होता है, अलग अलग स्कॉलर्स जो है अलग अलग प्रकार का सत्संग करते हैं, उनको उस सत्संग से उनको बहुत कुछ मिलता है और सत्संग से ही वो आगे बढ़े। अपने आप मेहनत करके वो इतने बड़े आदमी नहीं बने, वो सत्संग के कारण से बने। तो क्यों ना हम सत्संग का फायदा उठाएं, अपने आत्मस्वरूप को जानें, अपने आप को पहचानें और अपने शरीर को समझें, इंटरनली हो क्या रहा है मेरे अंदर, मैं पत्नी के साथ क्या व्यवहार कर रहा हूं, मैं हवन करता हूं, संध्या करता हूं, सेवा भी करता हूं, वो भी करता हूं, ये भी करता हूं, लेकिन मेरा व्यवहार पत्नी के साथ कैसा है, पति के साथ कैसा है, और लोगों के साथ मेरा कैसा व्यवहार है, मैं इंटरनली क्या कर रहा हूं, एक्सटर्नली दिखा क्या रहा हूं, वो क्या हूं, इन सब का पता अपने आप का एग्जाम खुद ही हम लेते रहेंगे। क्योंकि सत्संग में देते रहेंगे कुछ कोई ना कोई प्रेरणा देने लगेगा, आपको लगता है ये आज का सत्संग इतना मेरे अनुकूल नहीं रहा है, नो प्रॉब्लम, दूसरा आ जाएगा आपकी प्रॉब्लम। हर रोज हर संडे का सत्संग आपके बिल्कुल अकॉर्डिंग हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये बात जरूर होगा उसमें कोई भी एक तो वर्ड, एक तो शब्द क्लिक कर सकता है, और जीवन में कोई भी एक वर्ड भी क्लिक कर दे ना जीवन के साथ, नैया पार हो जाएगा। महर्षि पतंजलि ने एक बहुत बड़ी कही बात, वो कहते हैं एक शब्द सम्यक प्रयुक्त स्वर्गे लोके काम दुख भवती। अगर मनुष्य एक भी शब्द का सही मायने में इस्तेमाल कर ले, कोई एक शब्द, वो अपना नैया पार कर सकता है, अपने प्रयोजन को, अपने एम को पूरा कर सकता है। इसलिए सत्संग में हम साल भर जाए और साल भर में एक भी शब्द, साल में एक बार एक शब्द भी मिल जाए ना, वो एक ही शब्द हमारे जीवन को पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देगा। इसलिए सत्संग से दूर नहीं भागना है, सत्संग करते हुए अपने आप को पहचानना है, और संसार को तो पहचानना ही है, परमात्मा के निकट जाना है ज्ञान से। वो तो निकट ही है, दूर नहीं है, पर नॉलेज के अकॉर्डिंग भगवान के पास जाना है। नॉलेज के अकॉर्डिंग हम भगवान से बहुत दूर भागते जा रहे हैं। ये अगर कोई सिखा सकता है वो सत्संग से ही सीख सकते हैं, और सत्संग ही हमको बहुत आगे ले जा सकता है। इसी का नाम है स्वाध्याय है, अपना अध्ययन करना होता है और अपने आप को परीक्षित करना पड़ता है, अपने आप को परीक्षा देना पड़ता है, अपने आप खुद को एग्जामिनर बनना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। इतना ही कह करके मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं। मेरे को ये अवसर आप सबने दिया है, समाज ने दिया है, समाज के अधिकारियों ने दिया है, और आप सबको मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं, कृतज्ञता प्रकट करता हूं। ओम शांति।